नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय यात्रा पर फिजी पहुंची। वे फिजी के राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवेरे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। सरकार ने कहा, पिछले 10 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 164% बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया। देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद। अमेरिका ने हमास नेता की हत्या के बाद इसराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्ला द्वारा संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में G7 देशों को चेतावनी जारी की। अमेरिकी मंदी की आशंका के बीच वैश्विक बाजारों में गिरावट। जापान के निक्केई में 1987 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज शाम कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन की सरकारी यात्रा पर फिजी के नाडी पहुंच गई हैं। उप प्रधानमंत्री विलियम गावोका और भारत के उच्चायुक्त पीएस कार्तिकेयन ने उनकी अगवानी की। भारत के किसी राष्ट्रपति की ये पहली फिजी यात्रा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 और 7 अगस्त को सुवा और नाडी में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवेरे और प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेगी। राष्ट्रपति फिजी संसद को भी संबोधित करेंगी और स्वागत समारोह में भाग लेंगी। वह सुवा में गांधी मेमोरियल कॉलेज और नाडी में श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा का उद्देश्य फिजी से देश के ऐतिहासिक संबंधों को साझा और मजबूत करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए फिजी से श्री साई वेम्पत्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
लोकसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन 2013-14 के 33,278 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 164% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कुल बजट में से 55% राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार धीरे धीरे स्वास्थ्य बजट बढ़ा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर ऋण की उपलब्धता 2014 के 7,30,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2024 में 25,46,000 करोड़ रूपये हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल की है। केंद्र ने कहा है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में निवेश करने वाले 17,250 दावेदारों को अब तक 138 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आज कई सांसदों ने जनकल्याण के विभिन्न मुद्दे उठाए। भाजपा के समीक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मूक जनसंख्या के आक्रमण का सामना कर रहा है। केरल से कांग्रेस सांसद जेबी माथेर हिशाम ने खाड़ी देशों के लिए हवाई किराए में भारी वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि गरीब मजदूर तथा मध्यम वर्ग इसे वहन नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने देश में कैंसर के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि ओडिशा में कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे इसे पूरा करने के लिए सरकार को निर्देश दें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों से अराजकता फैल गई है। देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने आज ढाका तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। सरकार ने अशांति को रोकने के प्रयास में देश के कई हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कल ढाका और देश के कुछ अन्य भागों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने आज ढाका तक मार्च की घोषणा की है और समाज के सभी वर्ग के लोगों से प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे की मांग के लिए एकजुट होने को कहा है। सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज, कल और बुधवार 3 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ढाका से एन परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना।
विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक वहां की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। मंत्रालय ने परामर्श जारी कर बांग्लादेश में सभी भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने और कहीं आने जाने से बचने को कहा है। उन्हें आपात फोन नंबर पर ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने को कहा गया है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइल पर ईरान और हिजबुल्ला की संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में G7 देशों के विदेश मंत्रियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी हाल में हिजबुल्ला और हमास में प्रमुख हस्तियों की हत्याओं के मद्देनजर आई है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका का मानना है कि ईरान और हिजबुल्ला दोनों सोमवार को ही इसराइल पर हमले की शुरुआत कर सकते हैं। बदले की इस संभावित कार्रवाई की सटीक प्रवृत्ति अभी स्पष्ट नहीं है। श्री ब्लिंकन ने इससे पहले तनाव कम करने के प्रयासों के तहत अपने GCC समकक्षों से बातचीत की और उन्होंने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया और वरिष्ठ हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुक्र की हालिया हत्याओं के बारे में यह चेतावनी बढ़ा दी है। इन हत्याओं के लिए व्यापक रूप से इसराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजू सेठिया।
नेपाल के पाटन में भोटो यात्रा समारोह के साथ आज संपन्न हो रही है। काठमांडू घाटी में आज सार्वजनिक अवकाश है क्योंकि उत्सव में भाग लेने के लिए घाटी भर से लोग पाटन पहुंच रहे हैं। इसका आयोजन रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा के महीने भर चलने वाले रथ यात्रा के अंतर्गत किया जाता है। एक रिपोर्ट।
काठमांडू घाटी के पाटन जिले में रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा की शुरुआत एक लकड़ी के रथ के निर्माण से होती है। रथ के ऊपर बांस और पेड़ की शाखाओं का एक 60 फीट लंबा शिखर बनाया जाता है, जिसे झंडे और झंडियों से सजाया जाता है। यात्रा पुल चौक से निकलती है और जुलूस ज्वाला खेल में समाप्त होता है। रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा के अंतिम दिन भोटो यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें परंपरा के अनुसार रातो मच्छिंद्रनाथ की भोटो नामक रत्न जड़ित नेपाली बनियान को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक नेपाली वाद्य यंत्र बजाते हैं और नृत्य करते हैं। यह त्योहार काठमांडू घाटी में बारिश की उर्वरता का प्रतीक है। नेपाल से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
सरकार ने आज लोकसभा में गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन संबंधी विधेयक 2024 पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अधिक भागीदारी के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखा है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास की अपील की। महाराष्ट्र के पुणे में जीका रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 5 गर्भवती महिलाओं और 2 अन्य लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक जीका मरीजों की संख्या 72 हो गई है।
पुणे जिला स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की गुंजाइश है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ससून अस्पताल से और अधिक जांच रिपोर्ट प्रलंबित है। पुणे नगर निगम ने नागरिकों से जीका वायरस के प्रति सावधान रहने की अपील की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम उन स्थानों से जीवित मच्छरों और लार्वा के नमूने इकट्ठा कर रही है जहां जीका पुष्टि के मामले सामने आ रहे हैं। अगर एक लार्वा या मच्छर में संक्रमण की पुष्टि होती है तो पूरे पूल को दूषित माना जाता है। इससे स्रोत और संक्रमण फैलाने वाले संभावित वेक्टर को समझने में मदद मिलती है। मनोज क्षीरसागर, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों की तलाश आज पांचवें दिन भी जारी है। इन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तलाश अभियान आज सुबह फिर से शुरू हुआ। आज शिमला जिले के सुन्नी के पास डोगरी में दो और शव बरामद किए गए। राज्य के विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं में लगभग 40 लोग अब भी लापता हैं। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि तलाश अभियान जोरों पर है। कुल्लू जिले में व्यास नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण रायसन और क्लॉथ के पास बंद हुए कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को कल शाम वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। जिला उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि मलाणा से 15 स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब 11 लोग लापता हैं और बचाव अभियान जारी है। वहीं लाहौल स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में तिंगराथ और कारपत के चांगुत और उड़नौस नालों में बाढ़ के कारण पुल बह गया है। इस कारण घाटी के गांवों का अन्य जगहों से संपर्क टूट गया है। इस आपदा से फसलों को भी नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक राज्य में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केरल में वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में आज 7वें दिन भी शवों की तलाश जारी है। प्रभावित इलाके को 12 क्षेत्रों में बांटकर बचाव कर्मी शेष शवों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में भी घनघोर बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने आज सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। अखनूर और जम्मू के अन्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व के प्रमुख सूचकांकों में पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद आज वैश्विक बाजार में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के बाद एशिया के शेयर बाजारों में कमी दर्ज की गई। जापान में निक्केई 225 और टॉपिक्स इंडेक्स दोनों दोपहर के कारोबार में 10% से अधिक नीचे थे। निक्केई 225 स्टॉक इंडेक्स ने एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। सूचकांक 4000 अंक से अधिक गिरा। इसने 1987 में ब्लैक मंडे दुर्घटना में 3836 अंक की गिरावट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स में आज कांस्य पदक के लिए लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जियाली से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से हार का सामना करना पड़ा। भारत की माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका आज स्कीट शूटिंग मिक्स टीम स्पर्धा में उतरेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज कौशल संपन्न भारत के लिए सरकार के प्रयास विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और NSDS इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक वेदमणि तिवारी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यात्रा पर फिजी पहुंची। वे फिजी के राष्ट्रपति विलियम कैडोनिवेरे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। सरकार ने कहा पिछले 10 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 164% बढ़कर 90,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया। देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद। अमेरिका ने हमास नेता की हत्या के बाद इसराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्ला द्वारा संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में G7 देशों को चेतावनी जारी की। अमरीकी मंदी की आशंका के बीच वैश्विक बाजारों में गिरावट। जापान के निक्केई में 1987 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज शाम कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।